2 दिसंबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फजल। तेलंगाना में महिला वेटरनरी डॉक्टर के बलात्कार की गूंज संसद में।
तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीस काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड।
जिक्र होगा झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के जोर पकड़ने का।
जहाँ भी बीजेपी की सरकार बनती है लोगों को वो कुचलते हैं, कभी धर्म के कारण कभी विचारधारा के कारण लोगों को दबाया जाता है।
आपकी मुलाकात कराएंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से और होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला आज राज्यसभा में भी उठा। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि इस मामले में शामिल लोगों को जनता के सामने लाना चाहिए और उन्हें पीट पीट कर मार डालना चाहिए। इसके अलावा अन्य पार्टियों के सांसदों ने भी इस घटना की निंदा की है। विपक्षी दल के सांसदों ने सरकार से पूछा है कि वो महिला सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इन दिनों जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक चल रही है। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस भी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देशों को साल 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य कर देना चाहिए। कई विशेषज्ञों ने बताया कि आने वाले 12 महीनों में बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत है। बैठक में हिस्सा लेने पहुंची यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेन ने कहा कि यूरोपीय संघ इस दिशा में कानून बनाने पर काम कर रहा है।
Next March, we will propose the first ever European climate law to make the transition.
अगले मार्च तक हम पहले यूरोपीय क्लाइमेट कानून का प्रस्ताव पेश कर देंगे। इसमें सभी संबंधित क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना शामिल होगा। जैसा कि महासचिव ने कहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कीमत हमें भविष्य में चुकानी पड़ेगी। हम कानून में साफ और सुरक्षित ऊर्जा पर जोर देंगे। ये थे यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन के शब्द। रूस और चीन ने एक दूसरे से जुड़ी पहली गैस पाइपलाइन की शुरुआत की है। इस पाइपलाइन में साइबेरिया से उत्तर पूर्वी चीन तक गैस पहुंचाई जाएगी। इस गैस पाइपलाइन के उद्घाटन के मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वीडियो लिंक के जरिए आपस में जुड़े थे। इस परियोजना की शुरुआत तब हुई जब 5 साल पहले रूस की सरकारी गैस कंपनी गैज़प्रोम ने चीन के साथ 30 साल का करार किया था। वीडियो के जरिए राष्ट्रपति पुतिन ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया।
В этом году 70-летие установления дипломатических отношений.
इसी साल चीन और रूस के बीच राजनयिक रिश्तों की शुरुआत हुए 70 साल हो गए हैं और इसी साल हमने रूस की गैस चीन में सप्लाई करने की शुरुआत भी कर दी। यह कदम रूस और चीन को और करीब लाएगा। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी हैं। बगदाद में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 7 लोग लापता भी हुए हैं। एक मानवाधिकार समूह ने इन लोगों के लिए अपनी चिंता जाहिर की है। ह्यूमन राइट वॉच समूह का कहना है कि यह पता नहीं चल पाया है कि इन लोगों को सेना या हथियारबंद लड़ाकों ने अपने कब्जे में रखा है या नहीं। इस समूह ने इराक की सरकार से कहा है कि वह इन लोगों की सुरक्षा अपने हाथों में ले। हांगकांग में आज दफ्तरों में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी लंच ब्रेक के दौरान लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में हिस्सा लेने उतरे। आज हुए प्रदर्शन का मकसद विज्ञापन जगत को यह बताना था कि वह भी इस आंदोलन में उनका साथ दे। इससे पहले चीन ने बताया कि वह अमरीका द्वारा हांगकांग में हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में लाए गए विधेयक का विरोध करता है। इसी के तहत अब अमरीकी समुद्री जहाज और एयरक्राफ्ट हांगकांग नहीं जा सकेंगे। साथ ही अमरीका स्थित कुछ मानवाधिकार समूहों पर भी प्रतिबंध लग सकता है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में रात के वक्त हुए हवाई हमलों में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की सूचना है। ये हमले त्रिपोली के रिहायशी इलाकों पर हुए हैं। लीबिया की सरकार का कहना है कि ये हमले संयुक्त अरब अमीरात के ड्रोन से करवाए गए हैं। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात ने इससे इनकार किया है। जापान में कई कार्यकर्ताओं ने सरकार से कहा है कि वो देश की अलग अलग यूनिवर्सिटियों और कंपनियों में होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। जापान में इस यौन उत्पीड़न को पावर हरेसमेंट कहा जाता है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर के रेप के बाद निर्मम हत्या से देश भर में उबाल है। आज इस मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। दोनों सदनों में सभी दलों के सदस्य इस जघन्य कांड पर बेहद नाराज नजर आए। सांसदों ने दोषियों को जल्द से जल्द फांसी के लिए कानून को और कड़ा करने की वकालत की। संदीप सोनी की रिपोर्ट।
राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन इस घटना से इस कदर आक्रोशित थीं कि उन्होंने बलात्कारियों को भीड़ के हवाले कर डालने का सुझाव दे दिया। राज्यसभा के सभापति जया बच्चन के सुझाव से थोड़ा हैरान नजर आए।
इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीस काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड प्रॉपर्ली।
वहीं AIADMK की सांसद विजिला सत्यानंद चर्चा के दौरान भावुक हो गईं। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि देश बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। उधर लोकसभा में सदन के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार दोषियों को फांसी दिलाने के लिए कानून को और कड़ा करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव का कहना था कि आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा देना होना चाहिए।
इस प्रकार की घटनाएं सभ्य समाज में एक चुभन की तरह होती हैं। आज जो समाज का वातावरण है उसमें कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा, स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय करने का अधिकार, ये सारे विषय ऐसे हैं जो केवल प्रशासन के द्वारा नहीं बल्कि हम सबके संकल्प के द्वारा व्यक्त होने चाहिए।
राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि इस तरह की अमानवीय घटना से कानून के जरिए नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा, उम्र को लेकर भी सबको विचार करना चाहिए। कई लोग हैं जो कहने लगते हैं कि आरोपी नाबालिग है, जो दुष्कृत और अपकृत कर सकता है उसका उम्र से क्या लेना देना।
फास्ट ट्रैक कोर्ट एक समाधान है, मगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद क्या है? वो प्रक्रिया है ना, जो नेक्स्ट अपील, नेक्स्ट अपील, नेक्स्ट अपील। Then another issue is about the age. I would appeal to the country, to politicians, to political parties, members, to cutting across. There is again an argument. ये तो juvenile है, इनको मालूम नहीं वो क्या कर रहे वगैरह। इसके बारे में एक सर गंभीरता से हम सब लोग रिविजिट करना चाहिए। जो दुष्कृत्य और अकृत्य कर सकते हैं उनको उम्र से क्या लेना देना है।
कुछ सांसदों ने मेजे थपथपाकर सभापति के इस सुझाव का समर्थन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बलात्कार जैसी हैवानियत पर रोक लगाने में नए नए कानूनों की जगह राजनीतिक इच्छा शक्ति ही कारगर हो सकती है। उन्होंने कहा कि अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी सजा मिलती है तो अपील पर अपील करने के चलन के कारण मुजरिम बचता चला जाता है। क्या ऐसे लोगों पर दया करनी चाहिए? संदीप सोनी, BBC, दिल्ली।
झारखंड विधानसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। पहले चरण के मतदान के बाद अब सभी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज झारखंड में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल झारखंड आ रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गजों ने अपने नामांकन का पर्चा भी दाखिल किया है। कैसी है वहां की चुनावी गहमा गहमी, बता रहे हैं रांची से रवि प्रकाश।
झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सिमडेगा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करने के आरोप लगाए। झारखंड चुनाव में राहुल गांधी की अब पहली सभा थी। उन्होंने कहा,
जहाँ भी बीजेपी की सरकार बनती है लोगों को वो कुचलते हैं, कभी धर्म के कारण, कभी विचारधारा के कारण, संस्कृति के कारण लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, तो ये जो आप पे दबाव डाला जाता है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। CNT SPT एक्ट जो है, जिसको BJP बदलना चाहती है, मैं आपको इस स्टेज से कहता हूँ कि इस एक्ट को हम नहीं बदलवाने देंगे।
भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रधरपुर और भरागोड़ा में अपने चुनावी भाषणों में फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का मसला लटकाए रखना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। अमित शाह ने कहा,
और दूसरी ओर कौन है? कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी। मैं श्री हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूँ कि भैया हेमंत जी, जब गुरु जी आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी झारखंड राज्य की रचना का, तब झारखंड के युवाओं पर गोलियां चलाई जाती थी, डंडे बरसाए जाते थे, वो कौन पार्टी करती थी? यही कांग्रेस पार्टी उस वक्त झारखंड की रचना का विरोध करती थी। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूँ कि जिस झारखंड की रचना का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ सत्ता की लालच के कारण आज हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बनने निकले हैं। मित्रों,
वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संथाल परगना के बरहेट से 2 सीटों में अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर आयोजित सभा में उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हेमंत सोरेन ने कहा,
अभी प्रधानमंत्री आवास के नाम पर इन लोगों ने जो धन लुटाई की है वो आपको मालूम, बिना घूस का वो प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता और बिना कर्जा का वो पूरा नहीं होता। और आज ऐसा घर जो जेल का कोठरी जैसा घर, जिसमें आप घर में माँ बाप बेटा बहू पुतोहू है, कितना लोग रहेगा? इससे अच्छा तो जेल का कोठरी है। क्या गरीब मान सम्मान से नहीं जी सकता? क्या गरीब नमक का बोरा है क्या जो एक के ऊपर रहेगा? ये तो उस टाइप का गांव देहात में गोहाल जैसा है, जिसमें गाय भी डाल दो, बैल भी डाल दो, सुअर भी डाल दो, बकरी भी डाल दो, भेड़ भी डाल दो। इसलिए हमने निर्णय लिया है, हम सरकार बनाएंगे और गरीबों को सुसज्जित 3 लाख रुपया का आवास देने का काम करेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा के नेता बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के धनवार में, तो माकपा नेता सीताराम येचुरी ने रांची में लोगों से वोट मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल दोबारा झारखंड आएंगे। वे जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। उन्हें खूंटी में भी एक जनसभा करनी है। बहरहाल, राजनीतिक दलों की लगातार हो रही रैलियों ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। अब सारा फोकस अगले 7 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग पर है। रवि प्रकाश, BBC रांची।
जैसा कि आपने सुना, झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के प्रमुख बाबूलाल मरांडी की पार्टी 81 में से 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमारे साथी सलमान रावी ने बाबूलाल मरांडी से बात की और पूछा कि ये चुनाव झारखंड और आपकी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
देखिए, चुनाव झारखंड प्रदेश की हो रही है तो स्वाभाविक रूप से राज्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है कि इधर राज्य को बने हुए 19 साल हो गए और 19 वर्षों में पिछले 5 वर्षों से बीजेपी की सरकार चल रही है रघुवर दास जी के नेतृत्व में। तो जितनी लोगों ने उम्मीदें की थी कि सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो या विकास अधिक होगा, फिर बहुमत की सरकार, फिर मुख्यमंत्री भी गैर आदिवासी, तो ये कई एक मिथक था, उसको तोड़ करके सरकार को लोगों ने बनाई थी। लेकिन लोगों को बड़ा निराश किया, जो यहाँ के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, जिस पर ये जो काम होना चाहिए थे, जिनके लिए काम करने चाहिए थे सरकार को, उस पर सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया।
पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार भी नहीं बनती अगर आप ना होते। मेरा मतलब है कि झारखंड विकास मोर्चा के 8 में से 6 विधायक वो पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए।
नहीं, यह बात आपने ठीक कहा, और इसी कारण से हमको तोड़ा भी उन्होंने, चूंकि उनको इस बात की एहसास थी, चूंकि उनके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत तो थी, लेकिन उनको लगा होगा कि वे आशू का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बाएं दाएं हो सकते हैं, तो उससे बचाव के लिए, फिर भविष्य की पॉलिटिक्स के लिए भी उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए, चूँकि उस बात को वो जानते थे कि JMM का जो कंस्टिट्यूंसी है वो बिल्कुल सीमित क्षेत्रों में है, लेकिन झारखंड विकास मोर्चा है तो इसकी पकड़ पूरे सर्वत्र राज्य भर में है, सभी वर्गों में, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के बीच में है। तो इनको लगता था अगर झारखंड विकास मोर्चा रह गया खड़ा तब तो आगे हमारे लिए मुश्किलें पैदा करेगी, तो इसलिए उन्होंने पहला काम किया। आपने देखा होगा कि भाई 28-29 दिसंबर को सरकार बनती है, जनवरी समाप्त होता है, फरवरी में ही हमारे विधायकों को तोड़ डालते हैं। चेको,
झारखंड में पूर्ण बहुमत किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिला। लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं अब तक, 19 साल हो गए हैं राज्य के गठन को। पिछली सरकार भी जो चली 5 साल के लिए रघुवर दास जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी नहीं चलती अगर तुम ना होते। यानी मेरा मतलब है कि अगर झारखंड विकास मोर्चा के 8 में से 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में ना चले जाते तो ये सरकार नहीं बनती। तो ये राजनीतिक स्थिरता जो है, जो अस्थिर माहौल है यहाँ का, कभी उलट पलट चलती रहती है, ये क्यों?
देखिए, चुनौती तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि जितना भी प्रयोग झारखंड में हो सकता था वो सब प्रयोग हो चुका। और आज जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो कोई भी है, तो सब लोगों ने झारखंड में काम किए हुए हैं, हम भी काम किए 28 महीनों तक, तो अब लगता है कि जनता को चुनने में अब दिक्कत नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी।
इस बार लगता है कि गठबंधन कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आजसू अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा, पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही थी, इस बार आप भी 81 सीटों पर लड़ रहे हैं। क्या बात है कि गठबंधन क्यों इस बार नहीं हो पा रहे हैं राजनीतिक दलों के बीच?
सामान्य तौर पर लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम गठबंधन के हिमायती रहे हैं। 2006 में पार्टी बनाए और 2009 में पहला आम चुनाव हुआ तो हमने गठबंधन किया था, लेकिन उस गठबंधन का भी एक अनुभव रहा कि गठबंधन उस वक्त हुआ जब चुनाव ऑन हो गया था और हम लोग दिल्ली में बैठ करके सीटों की बंटवारा कर रहे थे, तो हमें मुश्किल से 20 सीटें मिली और 5 सीट पर फ्रेंडली फाइट के कुल मिलाकर के 25 लड़े, 11 जीते। 2019 की लोकसभा चुनाव भी ऐसे ही हुआ, गठबंधन किए हम सब लोगों ने, महागठबंधन बना, लेकिन एकदम चुनाव ऑन हो गया, बातें चलती रही, तो लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ और दूसरे दिन से हमने गठबंधन की कोशिश की। मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, हमने देखा कि कोई रुचि नहीं ले रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष राहुल गांधी थे उन्हें त्याग, तब हमने अगस्त से अपने आप को सिमटना शुरू कर दिया कि हमने सोचा कि अब ये नहीं करेंगे। और फिर 25 मई को जनादेश समागम किए, तो उससे पहले सब वर्करों को बुलाए और एक एक विधानसभा की टीम बना करके हमने कहा कि यार अब हमको चुनाव मैदान में जाना है, इन लोगों के अब हमको इंतजार नहीं करना है।
ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी।
बीबीसी हिंदी रेडियो का दिन भर कार्यक्रम आप 25, 31 और 49 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर भारतीय समय के मुताबिक रोजाना शाम 7:30 से 8 बजे तक सुन सकते हैं। हमारे सभी रेडियो कार्यक्रम आप bbchindi.com पर लाइव भी सुन सकते हैं।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर हनी ट्रैप के मामलों को उजागर करने वाले एक अखबार मालिक के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक उनके होटल से 67 युवतियां मिली हैं। वहीं आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि ये सारी कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि आगे और नेताओं और अफसरों को एक्सपोज होने से बचाया जा सके। भोपाल से शूर्य नियाजी की रिपोर्ट।
इंदौर के स्थानीय अखबार संझा लोक स्वामी के मालिक जीतू सोनी और उनके बेटे अमित सोनी के ठिकानों पर शनिवार और रविवार को छापे की कार्रवाई की गई। इसी अखबार ने कुछ दिन पहले नेता और अधिकारियों की तस्वीरों के साथ छापा था कि हनी ट्रैप में गिरफ्तार हुई युवतियों के साथ किस तरह की बातचीत ये करते थे। इसके साथ ही इनके वीडियो भी वायरल हो गए थे। माना जा रहा है कि आगे भी कई नेताओं और अधिकारियों की बात सामने आती, इसलिए इन्हें निशाने पर लिया गया है। इंदौर एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने कहा कि इस प्रकरण का संबंध पत्रकारिता से नहीं है।
खोजी पत्रकारिता का संबंध इस प्रकरण से नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट इस मामले में बताना चाहूंगी कि यदि किसी के भी कोई अंतरंग फोटो या वीडियो है और अगर उसकी निजता का हनन करते हुए उसकी अनुमति के बिना इसको इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे या किसी मीडिया समूह में प्रकाशित किया जाता है तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत अपराध बनता है।
वहीं छापे की कार्यवाही जीतू सोनी के होटल माय होम पर भी की गई। दावा किया जा रहा है कि इसी होटल में वो क्लब और बार चलाया करते थे, जहां पर कई लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया था और आरोप यह भी लग रहे हैं कि वहां पर बंधक लड़कियों से गलत काम करवाए जाते थे। रुचिवर्धन मिश्र ने बताया,
माय होम में कार्यवाही के दौरान 67 विमेन एंड गर्ल्स 67 महिलाएं एवं बच्चियां रेस्क्यू कराई गई हैं, जो माय होम में ऊपर बड़े कंजेस्टेड तरीके से और बड़े दयनीय स्थिति से उनके लगातार एक के बाद एक पलंग वहां लगे हुए हैं, बीच में सिर्फ पर्दे का पार्टीशन पाया गया।
लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पत्रकार संगठनों के अलावा विपक्षी भाजपा के नेताओं का कहना है कि हनी ट्रैप को लेकर अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो वह बिल्कुल गलत है। इसमें सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सरकार से जुड़े नेता और अधिकारियों के नाम भी इसमें आ रहे हैं। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा,
हनी ट्रैप एक ऐसा मामला जो सरकार दबा रही है, क्योंकि उसमें सरकार से जुड़े हुए बहुत सारे अधिकारी और मंत्री भी हैं। और यदि कोई मीडिया ग्रुप यदि उसको उजागर करता है तो उसके ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई करना उसका मैं विरोध करता हूँ। पर कहीं अगर गलत काम हो रहा है और सरकार छापा मारे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, पर सिर्फ इस कारण से छापा मारे कि वह अखबार का मालिक कोई अखबार के माध्यम से सरकार से जुड़े हुए लोगों के चेहरे उजागर कर रहा है इसलिए उसके ऊपर छापा मार के और उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करें, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है।
इस पूरे मामले पर कार्यवाही इंदौर नगर निगम के सस्पेंड इंजीनियर हरभजन सिंह की एफआईआर पर की गई। हरभजन सिंह हनी ट्रैप मामले में सबसे पहले सस्पेंड हुए। आरोप है कि वह इन महिलाओं के द्वारा कई बार ब्लैकमेल किए गए। जीतू सोनी के ठिकानों से 170 वीडियो और ऑडियो क्लिप मिले। माना जा रहा है कि यह अगर सामने आ जाता तो मौजूदा सरकार के अधिकारियों के लिए दिक्कत पैदा हो सकती थी। शुरहनिया जी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का,
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ स्टूडियो में आज मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ हैं
सुशीला सिंह। और राजेश जी, बहुत दिनों बाद हम लोग,
सुशीला जी को भी नमस्कार
आपको भी मेरा नमस्कार।
कई लोग कहते हैं कि आप लोग एक दूसरे को नमस्कार नहीं कहते,
तो वो ये नहीं जानते कि हम सुबह 9 बजे से एक दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं और मिलजुल रहे होते हैं
जी।
तो राजेश जी, बहुत सारे ईमेल्स हैं मेरे पास और आज अगर मैं ये कहूँ कि रेहान फजल की विवेचना की तारीफों की झड़ी लगी हुई है तो कुछ गलत नहीं होगा। और ये पहला ईमेल है जंग बहादुर सिंह का, जो गोल पहाड़ी जमशेदपुर से लिखते हैं। को राइटर ऑफ द बुक ब्लैक वॉरेंट कन्फेशन ऑफ अ तिहाड़ जेलर सुश्री सुनेत्रा चौधरी जी का ये कहना है कि जैसे आज के पीढ़ी के लिए सबसे सनसनीखेज वाक्या था दिल्ली का निर्भया कांड, वैसे ही उस पीढ़ी के लिए बिल्ला और रंगा द्वारा दो भाई बहन गीता और संजय चोपड़ा की हत्या था। बात कर रहे हैं विवेचना की जो 29 नवंबर को प्रसारित की गई थी और इसे प्रस्तुत किया था रेहान फजल ने। वे कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि निर्भया वाले से कहीं ज़्यादा 1978 का वो मामले ने देश को झकझोर कर रख दिया था। मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ता था और बीबीसी अभी नया नया सुनना शुरू ही किया था। जैसा कि इस पुस्तक ब्लैक वॉरेंट के रिव्यू में बताया गया कि उन दिनों के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर गए थे, जो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था इस देश में। उसी दिन ये तय हो गया था कि कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थैंक्स रेहान सर, उक्त सनसनीखेज घटना को शब्द चित्र के माध्यम से रिवाइंड करके दिखलाने सुनाने के लिए।
लंबी चिट्ठी आपने लिखी, आपका भी शुक्रिया
जी। अगली चिट्ठी है, ये है मदन लाल लंबोरिया भिरानी से। ये लिखते हैं, झारखंड चुनाव पर लगातार कवरेज, बिहार से शिक्षा व अन्य मसलों पर रिपोर्ट, वसतुल्ला खान की पाकिस्तान डायरी अच्छी लगी, नवीन नेगी, सीटू तिवारी, सरप्रिया सांगवान की कार्यशैली में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। आपने कई बार लिखने के बावजूद दीनबंधु सर छोटू राम और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर विवेचना प्रस्तुत नहीं की, जबकि जवाहरलाल नेहरू और अन्य विषय पर विवेचना की पुनरावृत्ति प्रस्तुत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षात्मक चर्चा बीबीसी स्टूडियो में प्रस्तुत करें।
बहुत शुक्रिया आपका, और आपने एक पूरी लंबी सूची भेजी है इनकी, और इसमें जाहिर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सर छोटू राम जैसी शख्सियतें बहुत हैं इस देश में जिनके बारे में अभी तक हमने कोई विवेचना नहीं की है, लेकिन यकीन मानिए कि रेहान फजल मौका देखते ही ज़रूर कोई ना कोई प्रस्तुति इस पर आप तक लेके आएंगे
जी। अगली चिट्ठी है सादिक आजमी की, इन्होंने कौडिया आजमगढ़ से लिखा है, उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं, बीबीसी को हम एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच तस्वर करते हैं जिस पर सदैव उन मुद्दों को वरीयता दी जाती है जो विश्व स्तरीय प्रभावी बिंदु के जनक माने जाते हैं, पर जब यही संस्था किसी पार्टी के प्रचारक के रूप में खुद को स्थापित करने का प्रयास करने लगे तो खेद होता है। वर्तमान समय में भारत की GDP पिछले 6 वर्ष की अवधि में निम्न स्तर पर पहुँच गई है और इसके न सिर्फ राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरे प्रभाव पड़ने वाले हैं। ऐसे गंभीर मुद्दे को छोड़ मुंबई में सरकार बनाने से क्यों चूकी बीजेपी, जैसे विषय पर चिंतन मनन करना, वह भी बीबीसी इंडिया बोल जैसे मंच पर, समझ के परे है। काफी नाराज है हमसे।
जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है उस पर कई बार हम इंडिया बोल कार्यक्रम कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, और महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा था वो भी एक गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम था जिसको हम चाहते थे कि उस पर बात हो, चर्चा हो। दोनों में से आपको अर्थव्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, वो आपकी राय है, जिसका हम स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम का नाम भी आपकी राय है, जिसमें हम आपकी राय सुनना चाहते हैं। लेकिन यह है कि सप्ताह में एक ही बार होता है कार्यक्रम इंडिया बोल और उसमें विषय का चुनाव करना होता है। हमेशा कई विषय होते हैं, उनमें से हम एक को चुनते हैं। जाहिर है कि बहुत सारे श्रोता चाहेंगे कि इनमें से इन दो विषयों नहीं बल्कि इनमें से किसी तीसरे विषय पर या चौथे विषय पर कार्यक्रम की उम्मीद वो कर रहे होंगे और ये उम्मीद जायज़ भी है, लेकिन हम हफ्ते में एक ही कार्यक्रम कर सकते हैं इंडिया बोल और उसका विषय का जो चयन है उस पर हमेशा मतभेद लोगों के मन में हो सकता है।
जी, अगली ईमेल है राहुल कुमार बंटी की, इन्होंने बेतिया बिहार से लिखा है और ये राजेश जी के लिए है, राजेश जोशी जी के लिए है। ये लिखते हैं, डियर राजेश जोशी जी, आलोचनाओं में आप इतने व्यस्त हो गए हैं कि तारीफ के पत्र पढ़ना भूल गए हैं। आज एक भाई ने आपसे बात कर ली और आपने हम पर नज़रें इनायत करना गवारा नहीं समझा। हाँ, मैं सुबह से ही BBC सुनता हूँ, मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करता हूँ उस समय सुनता हूँ, रात में भोजन पचता नहीं, BBC आधा घंटा टहल के सुने बगैर। 24 सालों में बिना नागा सुन रहा हूँ आपका और BBC का मैं मुरीद हूँ, तो आप क्या मुझ पर अत्याचार करेंगे? मुझसे क्या खता हुई कि आप मेरा मेल पढ़ते नहीं? अगर आप मेरा ये पत्र पढ़ेंगे तो फिर इसके बाद मैं एक ऐसा पत्र लिखने के लिए प्रेरित होऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं लिखा होगा। ये मेरी चुनौती है, ये इनका दावा होना चाहिए।
आपने वैसे इनका पत्र पढ़ा और कितनी कितनी प्यार भरी डांट इन्होंने गाई है, और इस तरह के पत्र हमें मिलते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे श्रोता हमसे कितना जुड़े हुए हैं और कितना प्यार करते हैं। अब मौका है चलने का। चलते चलते हम आपको अपना पता बता दें, हमारा पता वही है। अगर आप डाक से पत्र भेजना चाहें तो BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह, और आज शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड में दोहरा शतक जमाने वाले मेहमान टीम के पहले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेडन पार्क मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 226 रनों की पारी खेली। मैच के चौथे दिन रूट ने दोहरा शतक पूरा कर इंग्लैंड को भी मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जो रूट का ये 17वां टेस्ट शतक और तीसरा दोहरा शतक है। जो रूट ने अपने साथी ओली पॉप के साथ एक जोखिम भरा रन लेकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। रूट ने दोहरे शतक का जश्न मनाने से पहले पॉप से इसी जोखिम भरे रन के लिए माफी मांगी। ओली पॉप ने 75 रनों की पारी खेली तो वहीं रूट और पॉप ने 193 रनों की साझेदारी की। इसी के साथ रूट ने क्रिस गेल की न्यूजीलैंड की जमीन पर किसी भी कप्तान द्वारा बनाए गए सर्वोच्च स्कोर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और अब बात बॉक्सिंग की। उड़ीसा वॉरियर्स और पंजाब पैंथर्स के बीच सोमवार को होने वाले मुकाबले के साथ ही बिग बाउट लीग की शुरुआत होगी। लीग के पहले मैच में सबकी नजरें देश की सबसे बड़ी बॉक्सर MC मैरीकॉम पर होंगी। ये लीग 21 दिसंबर तक चलेगी। इस बार सभी 6 टीमों ने 2-2 टीमें तैयार की हैं, यानी हर वजन वर्ग में उसके पास 2 खिलाड़ी हैं। जाते जाते बात कुश्ती की। टाटा मोटर्स सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के दूसरे दिन बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब एक बच्चे की माँ यानी अनीता श्योरन ने 68 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में राष्ट्रमंडल खेलों की ब्रॉन्ज मेडल विजेता रेलवे की दिव्या काकरान को हरा दिया। हरियाणा की 35 वर्षीय अनीता ने पिछले साल भी गोल्ड मेडल जीता था और इस बार भी उन्होंने सबको चौंकाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। पंजाब की गुरशरण कौर ने 6 साल बाद वापसी करते हुए 76 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पूजा को 4-2 से हरा कर गोल्ड मेडल जीता। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और अब सभा के अंत में सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
इसी समाचार, हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला राज्यसभा में उठा। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि इस मामले में शामिल लोगों को पीट पीट कर मार डालना चाहिए। रूस और चीन के बीच पहली गैस पाइपलाइन की शुरुआत हो गई है। इस पाइपलाइन के जरिए साइबेरिया से उत्तर पूर्वी चीन तक गैस पहुंचाई जाएगी। इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। बगदाद में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 7 लोग लापता हुए हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के प्रवक्ता ने कहा है कि वो सरकार में मौजूद सहयोगी दल सोशल डेमोक्रेट के नए नेताओं के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं। BBC समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।